लाड ने कहा आंचल में भर लिया, जाने क्या देखा मुझ में, प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बना कर दिल में लिया समाए, नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लाडले कहा, मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया, जाने क्या देखा मुझ में।
ओम शांति। आप सभी का आपके ही घर में स्वागत है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट तो मेरा जहां तक मैं इंडिया जाता रहता हूं पूरे सेंटर्स पर, और जो बाहर के प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारे ज्ञान में आने के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैं दोनों का मिक्सचर बताऊंगा कि कैसे ज्ञान में आने से और बाहर वालों के कंपैरिजन में हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं, और हम अपने लाइफ को अगर इम्प्रूव करते हैं तो काफी आने वाले समय में हम स्टेबल हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा कहावत है इंग्लिश का, पहले इंग्लिश में कहूंगा फिर हिंदी करता हूं, वी ऑल आर अनकंडीशन सोल्स ट्रैप्ड इन कंडीशन एज सोलर इन इक्लिप्स, कि हम सभी वो आत्माएं हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, पर होता क्या है कि धीरे धीरे हम अपने जीवन में अपनी ही मान्यताओं के आधार पर अपनी आत्मा की कंडीशनिंग कर देते हैं। जैसे कि सूरज को जब ग्रहण लग जाता है तो सूरज की फुल पावर जमीन पर नहीं पहुंचती, वैसे ही हम आत्माएं भी जब ऊपर से नीचे आती हैं पहली बार सत्ययुग में अपना पाठ शुरू करती हैं, हमारे अंदर बहुत शक्ति रहती है, चार्ज रहता है, पर धीरे धीरे हम जैसे जैसे साइकिल में आगे बढ़ते जाते हैं वो शक्ति कम होती जाती है, और फिर वापस परमात्मा आकर हमें वो शक्ति देना चालू करता है। अब ज्ञान में आने के बाद होना तो ये चाहिए कि जैसे ही हमें अगर सही पहचान मिल जाती है खुद की और परमात्मा की, तो हमारी चार्जिंग चालू हो जाती, हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। पर फिर भी देखा गया कि इस जर्नी में हम सभी अपनी अपनी स्पीड से चलते रहते हैं। हम सबका एम का, फरिश्ते का, या कहें कि बाप समान बनने का रहता है। अल्टीमेटली हम सभी चाहते हैं कि हम बाप समान बन जाएं। तो ऐसी क्या विशेषता बाप में है जो हमारे में नहीं है, और जब हम मैचिंग करते हैं अपनी बाप से तो तब उस मैचिंग में हम अपनी कमियों को देख सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। यहां पर हम लोग भी जब से आए हैं, मैं पर्टिकुलरली अपना खुद का मॉडल एग्जांपल देता हूं कि जैसे ही 6 साल 96 में आया, उसके पहले बाहर था, अलग अलग जगह कार्य किया, चाहे विदेश में भी किया, इंडिया में भी किया, अब यहां आए, दोनों मैचिंग में करता हूं, तो दोनों मैचिंग में ये देखता हूं कि बाबा हर आत्मा को उसके अनुसार पाठ देता है। हमारी तैयारी, हमारी प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, जो मुझे रोज, कल भी एक बहन जो कमेंट्री करा रही थी वहां योग में, कि रोज सुबह उठकर जब मैं सुबह उठूं, अपने आप को तैयार करके बाबा के सामने खड़े हो जाऊं, हे परमात्मा, हे शिव बाबा, मैं आज के पाठ के लिए तैयार हूं, तू मेरे को यूज कर। तो जब हम ये उसके सामने सरेंडर हो जाते हैं, तो तब वो हमारा यूज करना चालू हो जाता है। जैसे आज भी मैं सुबह उठा, वो कमेंट्री के शब्द याद आए, और मैंने मुरली के समय ऐसे ही सोचा, तो इतने में मेरे पास मैसेज आया शीलू बहन का कि आप क्लास कराएंगे क्या, जबकि मुझे कोई नहीं मालूम था कि आज कोई क्लास करानी है। तो जब आप ओपन हो जाते हैं, तो प्रकृति भी और परमात्मा भी मदद करता है। एक बहुत अच्छी चाइनीज कहावत है जो मैं अपने जीवन में भी यूज करता हूँ और जो मुझे काफी हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में, क्योंकि मैं मेडिटेशन, ज्ञान बहुत सीरियस चीज नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज्ञान में आते हैं, सोचते हैं बहुत योग लगाना है, बहुत बैठना है। कई लोगों को स्ट्रेस आजकल हमने देखा, मैं इंडियन सिनेरियो बता रहा हूँ, फॉरेन का मुझे नहीं मालूम अभी, कि इंडिया में भी कई भाई बहनों को आजकल प्रेशर आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मैचिंग जब करते हैं परमात्मा से या एम एंड ऑब्जेक्ट से, उस मैचिंग में वो अगर फिट नहीं हो पाते तो उनको अंदर ही अंदर प्रॉब्लम आता है। दूसरा डिप्रेशन इसलिए आता है कि वो कई यंगस्टर आते हैं, कहते हैं 10 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, 15 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, मेरे को अभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो क्या कहें, आएंगे कि नहीं आएंगे? माइंड का काम है थॉट्स प्रोड्यूस करना। जो हमारे मेमोरी में चला गया है, रिकॉर्डिंग हुआ है ज्ञान के पहले और बाद में, वो है विच इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जन्म जन्म की रिकॉर्डिंग रहती हैगी। अब वो ज्ञान में आने से ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाएगी। अभी कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आता है। आपसे भी पूछता हूं, ऐसा कोई भाई बहन है जो ये कहे कि मुझे एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आता, 100% पॉजिटिव? फिर तो हम बाप समान हो गए, क्योंकि एक बाप ही है जो ऊपर से खड़ा हुआ, बैठा हुआ देख रहा है गेम को। अब उस गेम में वो देखो कितना डिटैच है। मैं कभी कभी देखता हूं, देखो जब बाबा आता है, हम लोग देखते हैं, हर बार बाबा के आता है, सब भाई बहनों से मिलता है, हम लोग देखते रहते हैं, कितना वो डिटैच होकर गेम को देखता रहता है। ऊपर भी देखता हूं, देखो वो कितना मजे से ऊपर बैठा हुआ है, और स्ट्रेस में चाहिए, हम लोगों को रिलैक्स होना चाहिए और उसको स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो उसको बनानी है, नई दुनिया। पर हम लोग स्ट्रेस में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमें लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम भूल जाते हैं जो उसने लेट डाउन किए हैं। तो पहला उसने जो रूल्स रेगुलेशन लेट डाउन किया है संगम पर, जब हम बाप के बन जाते हैं, जब हम बाप के बन जाते हैं, उसको सब कुछ दे देते हैं, इसलिए पहला मंत्र ये रहता है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, कि रोज सुबह जब मैं उठूं, अब मैं अपना गेम नहीं खेल रहा हूं, मेरा गेम खत्म हो गया संगम के पहले, जैसे ही ज्ञान की जिंदगी में आया, अब मेरा गेम वो खिला रहा है, उसने मुझे सिलेक्ट किया है, मैंने उसको नहीं ढूंढ रहा था। मैं अपना भी एनालिसिस करूं, हम नहीं ढूंढ रहे थे, हम तो इसे देखने गए थे क्या लगा यहाँ, प्रदर्शनी क्या लगी है, कौन लोग हैं। बहने पूछती थी जब कोर्स करा रही थी, कैसा लगता है आपको, शांति लगती है? मैंने कहा पहले भी शांति थी, अभी भी शांति है, पर बहनों को कहते थे, बहने पूछ रही है, हाँ अच्छा लगता है। तो उसने हमें ढूंढा। मैंने जब देखा कि जब मैं बाहर भी गया, बाहर सब तरह के चीजें थी, फ्रीडम था, डॉक्टर थे, माया का फुल फोर्स था, हम सोचते थे बाहर थोड़ा कदम उठाने की, तो खट से वो पकड़ के अंदर बिठा देता था। तो मेरे को लगा कि मैं शायद यहीं को बिलोंग करता हूँ, वो मुझे बार बार पकड़ के अंदर रख देता हैगा, मैं जब कोशिश करता हूँ वो पकड़ लेता हैगा। तो पहली चीज है निश्चय बुद्धि 100% कि रोज जो मेरे से वो गेम खिलाए मैं कहूँ यस आई एम रेडी, जो सीन मेरे सामने लाए कहे वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नथिंग न्यू। मुझे एक कहानी याद आई, अंगद जब गया रावण के दरबार में, उसने अपना पांव रख दिया और कहा कि अगर कोई इस पांव को हिला देगा तो सीता आपकी हो जाएगी। किसी कोई भी पांव हिला नहीं पाया, और जब वो वापस आया अपने झुंड में तो वो सब बंदर लोग जो थे, वानर सेना थी, वो कहे अरे अंगद, जब तूने ये कहा कि मेरा पांव कोई हिला देगा और हिल गया तो सीता आपकी, तो बहुत टेंशन में आ गए थे। बोला क्यों? अगर तेरा पांव हिल जाता था तो हमने तो सीता को लूज किया होता। तो अंगद ने बहुत अच्छा जवाब दिया, देखो मैंने क्या किया, मैं गया वहां, मैंने पांव रख दिया। अब मैंने पांव रख दिया, अब जिसकी सीता है वो आके समझे पांव हिलना है कि नहीं हिलना है, उसका टेंशन था, मेरा तो टेंशन था ही नहीं। और यही चाइनीज थ्योरी भी है, एक चाइनीज में मेडिटेशन के ऊपर एक थ्योरी है जो जैन मास्टर अपने लोगों को बताते हैं कि अगर आप अपने मन का बोझ शरीर के द्वारा जमीन में डाल दो तो आपकी स्टेबिलिटी बॉडी की अच्छी हो जाती है। और वो लोग भी ऐसे इतने नेचुरल खड़े हो जाते हैं जो जैन मास्टर होते हैं, बिल्कुल नेचुरल खड़े हो जाते हैं। और उनको हिलाने की, बहुत छोटे पतले दुबले हैं, उनको हिलाने की कोशिश करते हैं वो कुछ हिल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने अपना सीक्रेट बताया कि हमारे अंदर जो भी वेट रहता है हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, जमीन में ट्रांसमिट कर देते, फिर जमीन हमें खुद ही ग्रेविटी से पकड़ के रखती है। पर हम क्या करते हैं, चीजें अपने हाथ में रखकर खेलने की कोशिश करते। तो इसीलिए बाबा भी फिर क्या करता है, ठीक है जितना तुम खोलोगे उतना मैं दूंगा। अब मुट्ठी बंद पकड़ के रखी है और हम सोच रहे हैं कि बाबा मेरे से काम करा है, वो नहीं कराता। इसलिए जो चाइनीज कहावत है, वॉट एवर इज फ्लेक्सीबल एंड फ्लोइंग दैट विल ग्रो नेचुरली, whatever is rigid and block that will wither and die, whatever is flexible and flowing, yani jo cheez jitni lachili hoti hai, flexible hoti hai aur flowing hoti hai, wo cheez naturally badhti jati hai, usko koi mehnat karne ki zarurat, kuch nahi karna, aap baith jao bas, aapka nature agar open hai, flow hai, aapko sab cheeze khud hi haath mein aayegi। फ्लेक्सिबल हो आप रिजिड नहीं हो, सख्त नहीं हो, ब्लॉक नहीं हो, मुट्ठी पकड़ के नहीं चलते हो, तो आपको हर चीज खुद ही बढ़ती जाएगी। और नहीं है तो धीरे धीरे फिर डिप्रेशन आते, स्ट्रेस आते, प्रॉब्लम्स आते। तो दूसरा प्रिंसिपल है निश्चय बुद्धि के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल इजी और ओपन। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि हमें बहुत सीरियस रहना है या बहुत हंसना है, बैलेंस रखना है। जैसा श्री कृष्ण का जो मॉडल दिखाया गया हमारे माइथोलॉजी में, श्री कृष्ण का मॉडल में दो कैरेक्टर हैं। क्या कैरेक्टर हैं? एक तरफ तो वो है अर्जुन को ट्रेनिंग दे रहा है, वॉर सिखा रहा है, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण बच्चा बनकर मक्खन खा रहा है, बंसुरी बजा। तो इसको ही साइकोलॉजी में कहा जाता है दो ईगो हर एक में रहते हैं, एडल्ट ईगो, पेरेंट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। तीन ईगो हर एक में ये रहते हैं, चाइल्ड ईगो यानी मेरा बचपन, एडल्ट यानी जब मैं बड़ा हूं, पेरेंट यानी जब फादर मदर बन गए। ये तीन ईगो हर एक में रहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, हम जब ट्रांसफर होते हैं नॉलेज में तो एक ही पर्सनालिटी को पकड़ के चलते हैं। तो इसीलिए दूसरा है बैलेंस करके इजी होके चलना है, हर एक से मिलकर बात करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि हम कट ऑफ हो जाएं, क्योंकि कई मेजर कंप्लेन आती है कि आप जब लोग आपके यहाँ आते हैं बात ही नहीं करते हैं, सीरियस हो गए हैं जो वर्क प्लेस पे रहते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस में जब तक अगर आपका बैलेंस ठीक नहीं है तो हमारा जो रिविलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इसलिए बैलेंस बनाकर रखें कहाँ मुझे क्या करना है। मेडिकली भी देखें हमारे अंदर दो साइड हैं, लेफ्ट एंड राइट, ब्रेन का राइट हिस्सा और लेफ्ट हिस्सा। लेफ्ट हिस्सा क्या रहता है ब्रेन का? लॉजिकल रहता है, सोचने वाला रहता है। और राइट हिस्सा क्या रहता है? इमोशनल रहता है। कोई भी चीज को हम याद करते हैं, जैसे मेडिटेशन में भी बैठे हैं उसको याद कर रहे हैं, बाबा को, परम धाम को, गोल्डन एज को, तो मेरा राइट का हिस्सा काम करता है। लेफ्ट वाला क्या करता है? एनालिसिस करता है, सोचता है, जोड़ता है, एक चीज को देखता है। राइट वाला पूरी चीजों को देखता है। तो ये दोनों हिस्सों का बैलेंस होना चाहिए। पर क्या होता है कभी कभी मेल जो रहता है, भाई जो रहते हैं, लेफ्ट का ज्यादा यूज करते हैं और बहने राइट का ज्यादा यूज करती है। अब लेफ्ट और राइट को कैसे यूज करें वो हमें मेथड मालूम होना चाहिए। क्योंकि एक बहुत अच्छे ऑथर ने एक किताब लिखी है, 7 Habits of a Successful Person, स्टीवन कोवी करके फेमस ऑथर है। उसने अपनी पहली इस किताब में लिखा है, मैनेज बाय लेफ्ट लीड बाय राइट। यानी आपको केवल मैनेजर बनना है, मैनेज करना है चीजें तो लेफ्ट को यूज करो, और लीड करना है तो राइट को यूज करो। पर अब अगर हम देखें इस सिनेरियो में, यहां मैं देखता हूं क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब ज्ञान में आते हैं बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल कभी कभी इतने हो जाते हैं कि हमारे डिसीशन लाइफ के रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना हमें राइट साइड होना है ना लेफ्ट साइड होना है, दोनों का बैलेंस रखना है। इसलिए बताया गया विष्णु चतुर्भुज, लेफ्ट एंड द राइट। विष्णु के दो इसलिए बताया, मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट, बोथ आर देयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इमोशनल कहां बनना है? इमोशनल बनना है, इसीलिए बहनें लीड लेती हैं। बहनों को क्यों चुना बाबा ने? क्योंकि दे आर राइट साइडेड, उनका जो इंट्यूजन रहता है बहुत अच्छा रहता है। राइट साइड वाले का इंट्यूजन अच्छा रहता है, लेफ्ट वाले का नहीं रहेगा। लेफ्ट वाला सोचता रहेगा 3 दिन तक 10 दिन तक, और वह एक सेकंड में वो डिसीजन लेंगे। कभी कभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में बोलते हैं, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, इफ यू आर नॉट एबल टू टेक द सोल्यूशन, टेक फ्रॉम योर वाइफ, तो वो आपको अच्छा सोल्यूशन कभी कभी सडनली देगी, क्योंकि उनका इंट्यूजन अच्छा रहता है। इसलिए दादीज को बनाया गया लीडर्स, नहीं तो भाई लोगों को लीडर बनाते तो क्या होता? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहते, डिसीजन ही नहीं ले पाते। अभी गवर्नमेंट में भी होता है ना, लेते हैं, बैठते हैं, कहते हैं डिसीजन लेंगे, आज मीटिंग होगी, फिर पेपर में आता है 1 हफ्ते के बाद 1 साल बाद। तो ये क्योंकि लॉजिकल वे में कभी भी हम कोई सोल्यूशन एकदम नहीं निकाल सकते। तो पर हमें क्या चाहिए? दोनों का बैलेंस चाहिए। जब बाबा को याद करें तब इमोशनल हो जाओ। मैं भी कोशिश करता हूँ इमोशनल होने की, पर इतना हो नहीं पाते क्योंकि मेडिकल लाइन और मेल पर्सनालिटी लॉजिकल साइड ज्यादा रहती है। इसलिए मैं बीच बीच में गीत सुनता हूँ। ये गीत भी मैंने सिलेक्ट करके लगाया क्योंकि इस गीत से क्या हो रहा था, मैं अपने को इमोशनल बना रहा था कि मुझमें क्या देखा उसने, मेरे को क्यों सिलेक्ट किया उसने। तो जब मैं वो क्वेश्चन अपने आप से पूछता हूँ तो मेरा इमोशनल पार्ट चालू होता है। तो इमोशनल होना चाहिए याद के समय, बाकी टाइम हमें बैलेंस डिसीजन लेना चाहिए, जो श्री कृष्ण की पर्सनालिटी में भी दिखाया, लेफ्ट एंड राइट का। तीसरा है जो मेन स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है, वो ये सिखाती है कि आप अपने पार्ट को अच्छी तरह समझिए। हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, हर आत्मा ऊपर से एक नई दुनिया लाती है, कॉन्टिनेंट लाती है। खुश वो रहता है जो अपने आत्मा का कोलंबस बनकर रोज उतरता है अपने अंदर और बाहर लाता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आत्मा अपने को अच्छी तरह पहचानती है, मेरे अंदर क्या है, मुझे क्यों पकड़ा है परमात्मा ने, मुझे यज्ञ में क्या कंट्रीब्यूट करना है, जिसको कहा गया इंग्लिश में पर्पस ऑफ द लाइफ। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का पर्पस क्लियर होता है, उस व्यक्ति को कोई भी सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं देती। हम सभी ने देखा ब्रह्मा बाबा का पर्पस बहुत क्लियर था, कितने ही प्रॉब्लम आए पर उसने अपने पर्पस के सामने बढ़ते गए। और जिस व्यक्ति का पर्पस क्लियर होता है, उसके विचार थॉट्स ब्रेक हो जाते हैं, सब लिमिटेशन को तोड़ देते हैं और वो एक नई दुनिया बनाते हैं। और ये चीज हम सभी आत्माओं में परमात्मा ने डाली है। अगर हम ये पहचान लेते हैं कि मेरे अंदर एटम बम छिपा हुआ है, एक नई शक्ति डाली हुई है और उसको मैं रोज निकालते जाता हूं, तो वो बढ़ती जाती है। हम सभी देखे, हम सब में एक एक विशेषता है, तभी तो उसने पकड़ा। इतना अच्छा वो एम्प्लॉयर है परमात्मा, ऐसे नहीं पकड़ता। इतना खाना पैसा लगा रहा है, बिठा दिया है, इतना खर्चा करता है, तो कहीं ना कहीं तो उसको मालूम है इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि हम भी जब आए थे तो हमें तो मालूम नहीं था क्या करना है। हम तो बाहर बहुत अच्छे थे, मजे में थे, कोई टेंशन नहीं था। दादी ने कहा आ जाओ, तुम अकेले रहते हो, सेवक भागते रहते हो, इधर आए। तो इधर आ गए तो शुरू में लगा करना क्या है मुझे यहाँ आके। बाहर तो हमारे पास बहुत स्कोप था, बहुत चीजें करते थे। पर धीरे धीरे जब उसने पहचान बताते गया और मजबूत बनाते गया, जो मेरे अंदर कमियां थी, वहां यहाँ आकर सीखा कि दादियां कैसे मैनेज कर रही है, परमात्मा कैसे मैनेज करता है, कभी गुस्सा ही नहीं करता, कितना चुपचाप आराम से मुस्कुराते हुए बैठा रहता। लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी ने बुलाया नहीं, भीड़ में घुस गए ऊपर चढ़ने टोली लेने के लिए, फिर भी मैंने देखा बाबा बिल्कुल आराम से टोली दे देता, गुस्सा नहीं करता। अरे तू क्यों चढ़ा, तेरे को तो बुलाया नहीं था। हम देखते रहते हैं कि कई लोग बड़ी कोशिश करते हैं, कहते हैं एक बार हमें चढ़वा दो, एक बार टोली मिल जाए। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि बेचारे को मिल जाए, पर रूल्स और रेगुलेशन है। हम उनको फिर धीरे धीरे समझाते हैं, पहले चांस वाले को तो नहीं समझा सकते, उसके इमोशन इतने रहते हैं, नहीं एक बार चढ़ा दो बस मेरी जिंदगी वो हो जाएगी। फिर हम सोचते हैं जो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और जो लोग नीचे बैठे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, हर एक का पार्ट अलग अलग है। अगर मैं ये सोचता हूँ अपने को, मैं अपने को लॉजिक वे में देता हूँ, उस समय इमोशनल नहीं होता हूँ, उस समय मैं अपने लॉजिक ब्रेन को यूज करता हूँ, मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या करूंगा, बाबा ने टोली भी दे दी तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा क्या, अनलेस मेरे अंदर चेंज आने की इच्छा है कि नहीं है। फिर कहता हूं नहीं नहीं, अगर भगवान भी राजा है, ही इज द मास्टर, तो मैं भी मास्टर हूं। जब तक मास्टर मुझे नहीं बुलाए मैं नहीं जाऊंगा, या ऐसा कोई काम कर दूं जो मास्टर मुझे खुद बुलाए कि यस यू कम, या दादी बुलाए कि हाँ तुम आओ बाबा से, बिना परमिशन के मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा। तो फिर मेरा सेल्फ स्टीम चढ़ जाता है, यस आई एम ए किंग, किंग हैज टू बिहेव लाइक ए किंग, तो मैं नियम को नहीं तोड़ूंगा। जबकि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब मेथडोलॉजी मालूम है कैसे जाके ऊपर टोली ले सकते हैं, पर मैं देखता हूं कि अगर मैं तोड़ूंगा तो मेरी प्रजा भी तोड़ेगी। जो मैं काम करूंगा, मैं मधुबन में हूं, अब मुझे मेरे को रिप्रेजेंट नहीं करना है, यज्ञ पहले है, मैं बाद में हूं। जब मैं ये बार बार अपने दिमाग में लाता हूं कि परमात्मा का शो मुझे करना है, परमात्मा पहले है, मैं बाद में हूं, तो तब मेरे अंदर की एनर्जी ऑटोमेटिक चालू हो जाती और वो फ्लो होना चालू होती है। जो मैंने कहा फ्लोइंग मींस ग्रोथ, अगर हम उसको ब्लॉक करके रखते हैं तो हमारी एनर्जी, हम लेक्चर दें पर लोगों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप अंदर से नहीं दे रहे, केवल माइंड से दे रहे हैं। और आजकल जो हमने देखा इंडियन सिनेरियो, पिछले 15 साल से सेवा में उतरे हुए हैं, पिछले 3 साल में जो चेंज देखा, अब लोग सुनना नहीं चाहते, अब लोग फील करना चाहते, और फील तभी हम करा सकते हैं जब मेरे वाइब्रेशन, मेरी पर्सनालिटी जीरो हो जाए। जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ज्ञान के बाद, जो सबसे बड़ा त्याग करना पड़ता है, बाकी सब त्याग कर लेते हैं, खाना नहीं खाना, पिक्चर नहीं देखना, दूसरी जगह नहीं जाना, ड्रेस चेंज कर लेते हैं, पर सबसे बड़ा जो चेंज आना चाहिए वो है मैं और मेरा जब खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, तब वो मेरे से बात करना चालू कर देता है। लोग पूछते हैं भक्ति और मेडिटेशन में क्या अंतर है। भक्ति में हम क्या कर रहे थे, हम बोले जा रहे हैं, घंटी बजाए जा रहे हैं, घंटी बजाए जा रहे हैं, तो भगवान वेट कर रहा था ये चुप हो तो मैं बोलूं, धनाधन धनाधन, तो वो वेट करता रहा। अब मेडिटेशन में क्या करते हैं, हम चुप हो जाते और वो बोलना चालू कर ले, पर अगर हम उसको बोलने ही नहीं देंगे तो फिर वो वेट करता रहता है। इसलिए मेडिटेशन कोई सीरियस चीज नहीं है, सिंपल होकर चुपचाप बैठकर साफ दिल से, जो दादी जानकी का फेवरेट क्लास रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वही एक फैक्टर मैं यूज कर रहा हूँ, सच्चाई और सफाई, ऑनेस्टी, क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियरिटी यज्ञ से, कोई मिक्सचर नहीं, सोचें कुछ करें कुछ। कई लोग सरेंडर होकर यज्ञ से ही बिजनेस करना चालू कर देते हैं, लेना चालू कर देते हैं। आप लोगे तो आपका अकाउंट तो माइनस होता जाएगा ना, हमें तो देना है। मुझे तो ये टेंशन रहता है जब से सरेंडर हुआ हूँ, कभी कभी मैं क्लास में से जोक में बोलता हूँ, टेंशन बढ़ गया जब से सरेंडर हुआ। क्यों, पहले नहीं था, अभी है। अब ये लगता है कि जो वो परमात्मा मुझे दे रहा है, खिला रहा है, उसका रिटर्न मैं दूं, अगर नहीं दूंगा तो वो मेरा तो अकाउंट माइनस चला जाएगा। इसलिए सरेंडर होना और बाहर रह के सेवा करना, दोनों में बहुत फर्क है। कई लोग सोचते हैं सरेंडर होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, हम मधुबन आ जाएं। कई लोग यंगस्टर कहते हैं मेरे को यहाँ मजा नहीं आ रहा है मधुबन में, मैं सरेंडर हो जाऊं ना मेरा योग अच्छा लगेगा। मैं कहता हूं अगर वहां तेरा योग नहीं लग रहा है तो फिर मधुबन आके भी नहीं लगेगा, क्योंकि मधुबन में आपको सब कुछ मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ फैसिलिटी है, और यहाँ रह के मैंने वो रिटर्न नहीं किया तो वो मेरे ऊपर 1000 times बोझा बढ़ जाएगा। सरेंडर वाला एक गलती करता है तो 1000 times माइनस में चला जाता, और बाहर वाला गलती करेगा तो 100 times होगा। इसलिए आप लोग खुश रहना, जो लोग जहां जैसा हो, जिस पार्ट में हो, इसीलिए मैंने कहा एक्सेप्ट योर पार्ट एज सच। पहला जो स्पिरिचुअल, आजकल एक नया टॉपिक निकला है HQ कंसेप्ट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। पहले था IQ कंसेप्ट, फिर आया EQ कंसेप्ट, इमोशनल क्वोशंट, अभी आया है HQ कंसेप्ट। कहते हैं कि जिसका HQ अच्छा होता है उसका IQ और EQ भी अच्छा रहता है। अभी कई स्टडी, स्पिरिचुअल क्वोशंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, दिस इज रिसेंटली इन साइकोलॉजी, 2 साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम USA, डेना जोवर, दे हैव एडेड दिस कंसेप्ट, हाउ SI, व्हाट आर द क्राइटेरिया। पहले था EQ, जो डेनियल गोलमैन और मेयर का था, कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहिए। IQ कंट्रीब्यूट 20% ऑफ सक्सेस, EQ कंट्रीब्यूट 80% ऑफ सक्सेस। तो इसलिए फिर लोगों ने देखा IQ तो बहुत है पर लोग मैच हार रहे हैं लाइफ में, तो फिर EQ आया, अभी आया SQ, और जो बाबा हमें SQ कंसेप्ट ही सिखा रहा है। तो इसमें पहला जो है विटामिन ए, SQ कंसेप्ट में ए मींस एक्सेप्ट योरसेल्फ एज सच। मैं जो हूं, जैसा हूं, जहां पैदा हुआ हूं, जिस घर में पैदा हुआ हूं, जो पार्ट दिया गया है बहुत अच्छा है। जब ये मैं रोज सुबह लाऊंगा अपने कंप्यूटर में, नहीं तो टेंशन ये आएगा, जैसे IIT यंगस्टर्स को क्या टेंशन आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, जब तक अमेरिका नहीं जाए तब तक उनको चैन नहीं आता। इंडिया मेरे को टेंशन बहुत है, जब तक मैं USA नहीं जाऊं तब तक मेरा टेंशन नहीं। फिर ज्ञान वालों को क्या आता है, जब तक सरेंडर नहीं हो जाऊं फिर सरेंडर, जब तक माउंट आबू नहीं आ जाऊं तब तक मुझे मजा नहीं आएगा। इमोशनल रहते हैं ना, और फिर इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं, फिर उनको वो फॉरवर्ड गियर नहीं मिलता है, तो फिर टेंशन आता है। तो पहली चीज मैं एक्सेप्ट करूं, जहां हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। अपनी बुद्धि लगाना मैंने खत्म। वो मुझे बोले यस यू कम, मैं जाऊं। वो बोले जहां हो वहीं पार्ट प्ले करो, प्ले करो। तो आप देखोगे जहां आप रहते हो वहीं आपसे वो सेवा कराएगा। यहां नंबर सेवा के वाचा के नहीं है। कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मेरे में सत्यता आ गई है? अच्छा, कोई भी कार्य करेंगे उसका बोझ हमें फील नहीं होगा। दूसरा, हमारी थिंकिंग एंड डूइंग विल बी सेम। जो विचार मेरे को इस सिचुएशन के लिए चाहिए वही विचार आएगा और होगा। जो बाबा ने कहा लास्ट में, जो समय आएगा आपको वायरलेस से कनेक्शन होगा, आप उस गाड़ी में बैठोगे और आप पहुंच जाओगे सेफ प्लेस पे। आपका कदम वहीं जाएगा जहां सेफ्टी है। उसको कहते हैं क्लियरिटी। इंट्यूशन इतना 100% होगा। इसको और क्लियर करता हूं। एक बहुत अच्छी कहानी अभी एक भाई ने सुनाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। इमोशनल कहानी है बड़ी। एक जैसे क्राइस्ट ने भी कहा कि हर आत्मा को परमात्मा अपने समान बनाता है, उसके इमेज में बनाता है। तो एक माता ने ये चीज पढ़ी बाइबल की कि परमात्मा अपने जैसा हर आत्मा को बनाता है। तो उसको बड़ी ये अच्छी लग गई कि हर आत्मा में परमात्मा का कुछ न कुछ अच्छा ही है। और परमात्मा सुनार भी है, गोल्ड स्मिथ भी है, कि वो हमारी इम्प्यूरिटीज को खत्म करके सच्चा सोना बनाता है। ये बात उसको बड़ी अच्छी लग गई। तो वो अपने एक रिलेटिव के पास जाती है जो सुनार है। उसके पास जाकर वो बैठती है। वो उससे पूछती है कि आप क्या करते हो? बोले देखो, मेरे को सोना ठीक प्योर बनाने के लिए उसको आग में तपाना पड़ता है, मेरे को आंख बिल्कुल वहां रखनी पड़ती है, धीरे धीरे उसकी इम्प्यूरिटीज खत्म होती जाती है। तो इसको माता को बात बिल्कुल ठीक लगी कि हाँ देखो, परमात्मा भी ऊपर से बिल्कुल देख रहा है हमारी इम्प्यूरिटीज को, याद के बल से हम खत्म करते जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन उसने पूछा, आपको कैसे पता लगता है कि ये बिल्कुल प्योर हो गया, गोल्ड 100% प्योर हो गया? तो उसने कहा कि जब मैं इसमें अपना चेहरा देख सकता हूं तब मुझे पता लग जाता है कि ये 100% गोल्ड हो। तो जब मेरे में 100% प्योरिटी आ जाएगी तब परमात्मा मेरे द्वारा बोलेगा, मेरे द्वारा रिवील होगा। जो बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता एक आत्मा नहीं कराएगी, हर आत्मा बाबा की प्रत्यक्षता कराने वाली। तो हम सभी बाबा के बच्चे अगर हम अपने को तैयार रखेंगे तो आप देखो, आप मंदिर बन जाएंगे, लोग आपके पास खुद ही आएंगे। मंदिर को कहीं जाना नहीं पड़ता। लोग सेवा के लिए इतनी माथा बच्ची करते हैं, मेहनत करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, कंपटीशन में आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, प्योर बन जाओ, बैठ जाओ मंदिर जैसे। देखो, एक ऑस्ट्रिया का बहुत अच्छा फिलोसोफर था कॉफिया, जो बहुत फेमस हुआ। उसने कहा आप कुछ मत करो, आप अपने कमरे में जाके कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ। बोला कुर्सी पर भी बैठकर केवल लिसन, सुनो, आप सुनना चालू करो। आप लिसन भी मत करो, अपने माइंड को बिल्कुल स्टेबल बना, स्टेबल बना। आप देखोगे कि लोग आपके पास खुद ही आना चालू कर देंगे कि क्या है आप में। यही द्वापर के ऋषि मुनि जंगल में बैठ जाते थे चुपचाप, राजा आकर सिर नवाता था, लोग खाना दे जाते थे। इतना पावर था उनके वाइब्रेशन में, इसीलिए एनिमल्स भी जो आते थे वो वहां आके चुपचाप बैठ जाते। अब क्या हो गया है कि अगर हमें ज्ञान में आने के बाद भी डर बना रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा डर अभी क्या हो गया है, फियर टू लूज, छूट नहीं जाए क्या होगा। डर बाहर वालों में तो है ही, पर अनसर्टेनिटी हम लोगों में भी कभी कभी आ जाती है कि क्या होगा, मेरी पोजीशन गोल्डन एज में क्या होगी। तो अनसर्टेनिटी को हटाकर, डर को हटाकर कुछ ना करें, अपने पार्ट को परफेक्ट प्ले करते जाएं। जो रोज मेरे से वो प्ले मैं यहां सोच रहा हूं, अब क्या होगा? माइंड एक्सेप्ट करेगा, सबकॉन्शियस कहेगा यस यस, तू नहीं बनेगा, पजा में ही जाएगा, वो सब यहां शरीर में जाएगा। जो भी हम सोचते हैं माइंड में, वो हमारे बॉडी के हर सेल्स में, 75 ट्रिलियन सेल्स में जाता है। अब मैं सोच रहा हूं यहां, टेंशन हुआ नहीं, हुआ कुछ नहीं है, पर मैंने स्ट्रेस क्रिएट कर दिया एंटीसिपेशन में, और बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया और पूरे बॉडी के सेल्स में गया। अब धीरे धीरे बीमारी आना चालू हो गई, डिप्रेशन आना चालू हो गया, अरे नहीं होगा, मेरे से हो ही नहीं सकता है। एक विचार आपके अंदर घुसा, उसको आपने चाय वाय पिला दी, हाँ हाँ ऐसा है, ठीक है, तो 100 विचार और आ जाएंगे, फिर आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे, और वो 3 दिन 5 दिन तक यहां पड़ा रहेगा, और 5 दिन तक पड़ा रहेगा। प्रेशर कुकर में तो सेफ्टी वॉल लगाया है, सीटी बज जाती है जब प्रेशर बढ़ जाता है। यहां प्रेशर बढ़ता है तो भगवान ने वो नहीं दिया कि सीटी बजने लग जाए, फिर तो मजा आ जाए कि जैसे ही टेंशन बढ़े, डिप्रेशन बढ़े, सीटी बजे, अपन नॉर्मल हो जाए, फिर से मैं आत्मा हूं, वो नहीं दिया। वो जो यहां चलता है वो सीधा यहां चला जाता है, इसलिए बीमारी फिर चालू हो जाती है। बार बार हर चीज को मैं सीरियसली ले रहा हूं, हर चीज को सीरियसली ले रहा हूं, योग को भी सीरियसली ले रहा हूं, तो क्या होगा? बॉडी में जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, जो स्ट्रेस में मदद करती है, वो क्या करती है, ज्यादा हर छोटी घटना में ये मैसेज देती है, अरे इसको बहुत टेंशन आ गया, बहुत बड़ा इसके सामने प्रॉब्लम है, तो ये जल्दी से एड्रिनलिन बनाने लग जाएगी। अब एड्रिनलिन तो बनना चालू हुई और आप उससे लड़ तो रह नहीं रहे हो। स्ट्रेस आती है तो हमें दो चीजें करनी पड़ती है। क्या करते हैं हम? या तो उसका सामना करो या भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट, उससे लड़ो। बॉडी ने शक्ति दी ना, 100 मीटर रेस करनी है, मैंने मैसेज दिया मुझे ये मैच जीतना है, तो मेरी एड्रिनलिन ने कहा यस, तो वो स्टेरॉइड बनाएगी, ब्लड यहां आ जाएगा, ताकत आएगी, मैं भागूंगा। 100 मीटर की रेस के बाद भी मैं सोचे जा रहा हूं, मेरा दिल धड़क रहा है, क्यों हुआ, ट्रैफिक जाम में क्यों फंस गया, मेरी ट्रेन क्यों फंस गई। ट्रेन में पहुंचने के बाद भी 3 घंटे तक बैठा हुआ सोच रहा हूं, इसको कहते हैं रेसिडुअल स्ट्रेस। एक हो गई एंटीसिपेशन, हुई नहीं घटना, उसको सोच सोच के मैंने अपने को बीमार कर लिया। दूसरी हो गई करंट स्ट्रेस। करंट स्ट्रेस यानी वो हमारे हाथ में नहीं है। करंट स्ट्रेस यानी कब कौन सा सीन सामने आपके आ जाए, आपके हाथ में है क्या? बाबा ने कहा ना कि हरेक का लास्ट सेकंड है। ये नहीं है कि विनाश के लिए हम वेट करें, अरे अभी तो 30 साल और हैं, लक्ष्मी नारायण बड़े होंगे, गद्दी होगी, अभी तो 35 साल है, टाइम है, कब किसका समय होगा वो अपने को नहीं मालूम, उसको कहते हैं करंट स्ट्रेस। अब टेस्ट पेपर जो होता है वो करंट स्ट्रेस में होता है। बीकेस का भी, बीके नॉलेज में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पॉइंट लिखता है, बहुत अच्छे योग करता है, पर जब सिचुएशन आई उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है, रिएक्ट नहीं करता है, शांत होकर उसको एक्ट करता है, वो बीके 100% पास है करंट स्ट्रेस को जो फेस करता है। और बाबा ने कहा मैं वो तो दूंगा। बाबा ने ये नहीं बताया कभी भी कि कब किस समय विनाश चालू होगा, और ना वो बताएगा। देखो जब कभी भी अभी मैसेज पूछे गए, कितने भी मैसेज पूछे गए, धर्म सम्मेलन करें कि नहीं करें, फॉरेन वाले आना चाहते हैं कि नहीं, लास्ट टाइम जब अर्थक्वेक हुआ तो मैसेज आया, बाबा ये लोग पूछ रहे हैं हम आए कि नहीं आए मधुबन में, तो बाबा ने क्या कहा, अगर डर लगता है तो मत आओ, अगर विचार है तो मत आओ, अगर डर नहीं लगता है तो आओ। तो देखो बाबा भी कभी गेम अपने हाथ में नहीं लेता, वो क्लियर डिसीजन नहीं लेता, वो ये नहीं कहता दादी मत करो सम्मेलन धर्म। अगर वो बोल देता धर्म सम्मेलन मत करो तो सब लोग सोचने लगते अरे अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, विनाश। तो उसने कहा आपको करना है करो। दादी जानकी का भी जब पूछा तो यही दिया, न्यूट्रल आंसर देता है, वो कभी ये नहीं कहेगा। वो क्यों नहीं देता है? वो हम सभी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। अल्टीमेटली मेडिटेशन का अर्थ है इमोशनली फिजिकली मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना, उसको कहेंगे मेंटली टफ, और वही व्यक्ति आने वाले समय में मैच जीतेगा जो मेंटली टफ है। मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली इंटरडिपेंडेंट। हम क्या होते हैं, अंदर से कमजोर होते हैं और बाहर से सॉफ्ट हो जाते हैं, बाहर से सख्त हो जाते हैं। बाहर से सख्त नहीं होना है, अंदर से टफ होना, बिल्कुल ही किसी के ऊपर नहीं। बाबा आया है नीचे, अब एक भाई ने कहा 5 साल बाद आया था नीचे मेरे पास में बैठा, उसने कहा आजकल मजा नहीं आता है, मैं 5 साल बाद आ रहा हूँ नीचे आया बाबा, क्योंकि तलहटी में था, क्या भीड़ भीड़ 20,000 लोग बैठे हुए हैं, मुझे वहां गेट पर रोक दिया, लोग मुझे पहचानते ही नहीं, मैं इतना पुराना भाई हूँ, बहुत पुराना, मेरे से भी सीनियर है, 25 साल का, फॉरेन का है एक भाई, बोला मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। अब क्या इसका आंसर क्या है आप बताइए। बाबा यहाँ आए, मधुबन आए, वहां आए, कहीं भी आए और न भी आए, मेरी स्थिति डगमग होना चाहिए क्या? अगर मेरा मेडिटेशन अच्छा है, मेरा उससे कनेक्शन अच्छा है, मैं कहीं भी बैठकर उससे योग कर सकती हूँ। अब आप आए, इतने साल बाद आए, नीचे आए, कोई बात नहीं, ये भी एक चेंज है। चेंज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। देखो पहले के स्टूडेंट मैं तो नहीं था, 69 के बाद ही आया। पहले वाले कहते हैं अरे जब बाबा आता था हम बहुत 12 घंटे बैठे रहते थे, सुबह बाबा जाता था, बाबा मेरे से 4 घंटे बात करता था, आजकल तो मजा ही नहीं आता है। बाबा भी देखो सिनेरियो चेंज करता है ना, वो लीडर है। पहले क्या आया, फादर। फादर क्या करता है, खाओ पियो, हाथ पकड़ के ज्ञान में आते हैं जब शुरू शुरू में, तो क्या मजा आता, उठाता है पलंग हिलाता, उठो उठो उठो, योग बहुत अच्छा चल रहा है, फैंटास्टिक। 6 साल 6 महीने 1 साल तो ऐसे चले जाते हैं कि हम दूसरी दुनिया में आ गए, सब छोड़ दो, बिल्कुल सब बढ़िया, मजा आ गया। फिर 1 साल के बाद क्या होता है, कहता हाथ छोड़ देता है, बेटा अब तू मदद कर, अब तू तेरे अनुभव पैदा कर, अब मैं तेरे को नहीं उठाऊंगा, तुझे उठना है, पलंग नहीं हिलाएगा वो, अब वो वाले अनुभव नहीं कराएंगे। मेरे को भी याद है क्या जोरदार अनुभव होते थे, लाइट आ रही है, मेरे में जो चेंज आया वो अनुभव ही उसने जो कराया, नॉलेज से नहीं आया, नॉलेज तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया 6 महीने तक, क्या बोल रहे हैं ये लोग, पर फिर भी जाता था, सुनता था, बहनें सुना रही हैं, ठीक है अच्छा, पर उसने जो अनुभव कराया, लाइट आती थी, पलंग हिलता था, उड़ जाते थे, सब बैठे हुए हैं, लाइट आ रही है, हिला रही है, जो हम करते थे सब छूट गया ऑटोमेटिक। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आपको ये छोड़ना है ये छोड़ना है, अगर बहनों ने कहा होता ये छोड़ना है ये नहीं खाना है नॉनवेज तुम्हें आता भी नहीं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, उसने जो शक्ति दी सब छूटता गया। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है ठीक है, हाँ यहाँ कुछ है, ये अनुभव पहले तो कभी नहीं हुए, ये करा रहा है, तो फिर उसने छोड़ दिया। फिर वो क्या करता है कि अब तुम्हें राजा बनना है, टफ बनना है, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है किंग्स के लिए है, सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। तो वो हमें क्या बनाना चाहता है, राजा बनाना चाहता है कि यू बिकम इंडिपेंडेंट, इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। तो बाद में क्या करता है, वो रस्सी खींच लेता है। फिर अब उसका पार्ट जब खत्म हुआ, परमात्मा का, फादर का, टोली खिलाना, 10-10 घंटे बात करना, फिर मैंने देखा अब वो क्या करता था, आए सब लोग, अच्छा आगरा से कितने आए हो, सामने आ जाओ बैठो, बात करेगा हर आगरा से। अब मैंने देखा वो पार्ट भी 96 के बाद चेंज हो गया, फिर बोला नहीं अब कहां से आए हो, अच्छा फिर इधर से आए हो बॉम्बे से, हाथ खड़ा कर दो, हेलो बाय, बस अब हेलो एंड बाय कर देता है। अब फिर बीच में उसने खुद उतर कर नीचे सबसे हेलो बाय कर ली कि तुम मेरे पास मत आओ, वहां हल्ला मत मचाओ, मैं ही नीचे आता हूँ, तो सबसे वो हेलो बाय 2 टर्न में ऐसा उसने किया, सबसे आकर वो खुद ही मिला। यानी वो क्या कर रहा है, रस्सी खींचते जा रहा है धीरे धीरे। अब अगर मैं डिपेंडेंट अभी भी हूं कि मेरे को टोली नहीं मिलेगी तो मेरी स्थिति ठीक नहीं रहेगी, तो फिर मैं मात खाऊंगा, क्योंकि हो सकता है किस टर्न में मुझे टोली नहीं मिले। हमेशा जाता था पर इस साल मुझे नहीं मिला चांस, तो क्या होगा, पूरी स्टेज 0 हो जाएगी। यानी मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट हूं, टोली के ऊपर डिपेंडेंट हूं। मैं तो खुद को कहता हूं मैं परमात्मा के ऊपर भी डिपेंडेंट ना बनूं, मैं इतना इंडिपेंडेंट बनूं कि जब मैं चाहूं उससे बात कर सकूं। मेडिटेशन का सिंपल वे में अर्थ ही क्या है, दोस्ती, भगवान से हेलो क्या बात है, कैसे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, सब साथ में चलता है ना, फिर क्यों हम इतना टेंशन में आते हैं, स्टेज के लिए इतना झगड़ा करते हैं। बैठे रहो आराम से, देखो खेल को, देखो देखो वहीं का वहीं आपको सब देगा। देखो जो पीछे बैठा रहता है, सबसे पीछे बाबा सबसे ज्यादा उसको दे। जितने अच्छे अनुभव मैंने अभी तक सुने लोगों के पार्टीज में, वो लोग सब पीछे वाले थे, जो पीछे बैठे हुए थे, चुपचाप आते हैं, शान से बैठ जाते हैं, मुरली सुनते हैं, चले जाते हैं, कोई वो फाइट नहीं करते हैं किस पे बैठना क्या करना, जहां उनको मिला वहां जाके वो बैठ जाते हैं और बाबा उनको वहीं टच कराता है। तो ये स्टेज हमारी धीरे धीरे हो जाए कि हम इमोशनली किसी के ऊपर न बैठ डिपेंडेंट करें, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ रिलायंट, जिसको एल्विन टॉफलर ने 3 किताबें लिखी जो वर्ल्ड फेमस हो गई, उसने आने वाली सदी में लिखा था कि क्या होगा, उसकी 3 किताब थी, थर्ड वेव, फ्यूचर शॉक एंड एक और किताब थी, थर्ड वेव फ्यूचर शॉक और एक तीसरी किताब भी थी। तीनों किताब में उसने ये लिखा कि आने वाले समय में कौन जिंदा रहेगा। उसने पहला क्राइटेरिया दिया जो सेल्फ रिलायंट होगा, जो मेंटली टफ होगा वो व्यक्ति जिंदा रहेगा, दूसरा जो पॉजिटिव होगा, तीसरा जो क्रिएटिव होगा, इंट्यूटिव होगा, वो व्यक्ति जिंदा रहेंगे, बाकी धीरे धीरे किसी न किसी प्रॉब्लम से खत्म होंगे। और आज हम सभी देखते हैं कि आज हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जो भी हमारे यहाँ होती है यहाँ बढ़ती जाती है। और ये देखा कि इंडियंस में हृदय रोग की बीमारी और डायबिटीज जेनेटिकली बायोकेमिकली ज्यादा होती, अमेरिकन से, चाइनीज से, यूरोपियन से, हम सभी में इसके चांसेस ज्यादा है। और अगर हमारा स्ट्रेस और इमोशनल मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो चांसेस हैं कि हमारे जीन्स जल्दी खुल जाते हैं। जीन्स आर लोडेड गन्स, लाइफ स्टाइल इज द ट्रिगर। जीन्स क्या है, हम सभी जीन्स लेके आते हैं बीमारी के, पर वो जीन को खोलता कौन है, जो हमारी सोचने की पद्धति है, इमोशंस। और ये देखा इंडियंस के इमोशन अमेरिकन्स यूरोप वालों से अलग तरह के हैं, और फिर ज्ञानी के इमोशन और अलग हैं। इंडियंस ओवरऑल क्या है, इमोशनली सेंसिटिव जनरेशन है। हमें कोई बाहर वाला कुछ कहेगा तो असर नहीं होगा, पर किसी ज्ञानी ने कह दिया तो अंदर तक खा जाता, अंदर तक पड़ा रहता है और वो बीमारी को जल्दी लाता, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम लोग कट ऑफ हो जाते हैं बाहर से। तो अब हमारा मुख्य अटेंशन क्या होता है, यही फैमिली में बनना है बेहद का राजा, फिर हम अटक कहां जाते, दुनिया मेरी है, सारी सृष्टि मेरी है। मैं कभी ये वर्ड भी यूज नहीं करता, बीके, ज्ञानी, अज्ञानी, ये भी कोई शब्द नहीं है। बेसिकली मैं पूरी दुनिया की 6 बिलियन आत्माओं से जुड़ा हुआ हूं, मैं केवल बीके का राजा बनूंगा क्या? केवल अगर मेरे को बीके का राजा बनना है तो छोटा सा बनूंगा, मेरे को तो पूरे विश्व का राजा बनना है। तो विश्व का राजा बनना है तो आपकी स्थिति बिल्कुल बेहद वाली होना चाहिए, अनलिमिटेड। रोज जाके ग्लोब में बैठ गया और पूरे वर्ल्ड को देख रहा हूं जैसे भगवान ऊपर बैठा हुआ है, मजे से खुश होकर देख रहा है, जो कर रहा है, जो कर रहा है, वेरी गुड, अच्छा, गलती की, ठीक है, गलती ड्रामा में किसकी है। अल्टीमेटली बहुत गहराई में जाएं स्पिरिचुअलिटी की, किसी की गलती है क्या? उस्माना बिन लदनान की गलती है क्या? किसी की गलती नहीं, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, तो हम क्यों टेंशन में आए? ज्ञान में भी कोई गलती करता, मैं क्यों गलती कर रहा, करने दो, हर एक में एक विशेषता है। हम उस तो गोल निकालने के लिए क्या करते हैं, अंदर जाते जाते हैं, मिट्टी हटाते हैं, वही का वही हो जाए। तो कैपेसिटी को बाहर निकालना है तो हर एक की विशेषता को देखो। एक बहुत अच्छी कहानी आपको 12 बजे एक कहानी सुनाते हैं, देखो हर एक में कैसी विशेषता है। एक व्यक्ति हर दिन एक गांव में पानी के 2 घड़े भरकर अपने मालिक के लिए ले जाता था, जमींदार के लिए। लकड़ी पे रखते ना, एक घड़ा इस साइड, एक घड़ा इस साइड, ऐसे लटका कर वो ले जाता था। एक घड़े में थोड़ा सा छेद था, क्रैक था। तो 2 साल के बाद ये क्रैक वाला घड़ा कहता है उस व्यक्ति को, मुझे बहुत शर्म आती है कि आप मेरे में पानी भर के ले जाते हैं, पर पानी वहां पहुंचते पहुंचते 3/4 मेरा 1/4 खर गिर जाता है, 3/4 ही मैं पहुंचा पाता हूं, मुझे इससे बड़ी शर्म आती है, और वो घड़ा आपको पूरा पानी देता है। उसने कहा कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे में क्या विशेषता है मैं तुम्हें बताता हूं। वो व्यक्ति उस घड़े को ले गया, उस घड़े जैसे वो 2 घड़े को ले जाता था तो उसने कहा जिस साइड तुम्हारा पानी गिरता था उस साइड देखो क्या है, उस साइड फूल और फल अच्छे लगे हुए थे, और इस साइड क्या है, प्लेन रोड था। बोला मैंने तुम्हारी विशेषता पहचान ली थी, तुम्हारी कमी भी जान ली थी, मैंने इस साइड बीज लगा दिए थे, तो रोज जो पानी गिरता था उसमें से फूल निकल आए, उसमें से एक फूल मैं रोज निकालकर मालिक की टेबल पे रखता हूँ, तो तुम मालिक के पास हो, तुम्हारे फूल मालिक के पास जाते हैं, और वो तो केवल पानी बाद में पीता है, तुम्हारा फूल पहले टेबल पर चला जाता। तो हर आत्मा में एक अच्छी खूबी छिपी हुई है, उसको पहचानना ही मेडिटेशन है, उसको पहचानना ही पर्पस ऑफ द लाइफ है, और उसको आप बढ़ाते जाइए तो आप देखो आप भी एटम बम बन जाएं। हरेक में एटम बम है, पर हम अपनी कंडीशनिंग कर देते हैं उस हाथी जैसे। हाथी जो रहता है ना, जब यंग एलिफेंट को पकड़ते हैं जंगल से, उसको लाते हैं, उसको मोटे चेन से बांध देते हैं, मोटे पेड़ से बांध देते हैं, हाथी छोटा यंग तोड़ने की कोशिश करता है, भागू, फिर डिटैच हो जाते हैं सब तरफ से ध्यान हटाते हुए की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता, मोटा चेन हेवी और पेड़ हेवी। फिर वही हाथी जब बड़ा हो जाता है उसको हल्के चेन से बांध देते हैं और हल्की लकड़ी से बांध देते हैं। अब ये हाथी चाहे तो तोड़कर भाग सकता है, पर हाथी नहीं भाग क्यों नहीं भागता, हाथी इतना स्ट्रांग। ऐसे ही हमारे माइंड की हम कंडीशनिंग कर देते हैं और उस ट्रैप में फंस जाते हैं, और जो व्यक्ति उस ट्रैप को निकाल देता वो लीडर बन। बस इतना ही फर्क रहता है, सखी अपने सब लिमिटेशन को क्रॉस कर जाता है, बैरियर्स को क्रॉस कर देता, तो वो अपनी एक वर्ल्ड खुद क्रिएट करता। और हमने तो देखा यहाँ कि बाबा ने हर आत्मा में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज भरी है, केवल उसको वो लोग आइडेंटिफाई कर लें, उसको यूज करने लग जाएं, तो बाबा उसको एक्सपांड करता रहे। एक कदम तो बढ़ाना पड़ता है, हम सोचें कि नहीं हम एक कदम बढ़ाए नहीं ऐसे रहें, फिर तो बाबा का जो रिजल्ट है तो एंड ऐसे ही करेंगे कि योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड, यू आर व्हाट यू थिंक, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपने यहाँ ठान लिया। जब फर्स्ट टाइम एडमंड हिलेरी हिमालय पर गया और उस माउंट एवरेस्ट तक नहीं चढ़ पाया तो वापस आ गया, तो लोगों ने पूछा सर आपका क्या अनुभव था, उसने कहा हे हिमालय तुझे जितना बड़ा होना था बड़ा हो गया, हिमालय जितनी हाइट है उसकी इतनी हो गई, मैं बड़ा हूं करूंगा। नेक्स्ट ईयर एडमंड हिलेरी गया और फिर वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया। तो हर व्यक्ति के अंदर वो एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो जाता है कि मेरे अंदर एक एटम बम छुपा हुआ है, केवल मुझे उसको निकालना है, एक कदम रखना है, तो बाबा देखो आपको धक्का मारता रहेगा, हमेशा धक्का मारता। मैं कभी सोचता हूं अरे मुझे नहीं, मैं बैठा हुआ था अभी एक हफ्ता पहले नीचे क्लास में बैठा हुआ था, क्लास चल रही थी, एक भाई आया भागते भागते चलो चलो चलो, वो बहन ये कौन सी बहन आने वाली, नीचे शिविर का टाइम था 7:45, वो आई नहीं है, ये सोशल विंग की कॉन्फ्रेंस थी, आप आकर पहला लेसन कराओ। अब मैं बैठा हुआ हूँ मुरली सुन रहा हूँ, उसने कहा चलो चलो तो जल्दी, मैं गया, मैंने कहा जो ऑर्डर मिले मैंने सोच लिया है यहाँ रहना है तो हाँ यस सर, तो मैं गया बैठा, योग का गीत बजा, और जैसे योग का गीत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। फिर कई बार ऐसा देखा कि मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पास हर चीज आएगी, बिकॉज यू आर द मास्टर। जो विवेकानंद ने कहा था, गीता ने कहा था, डू नॉट कंट्रोल द लाइफ। हम अपनी एनर्जी लाइफ को कंट्रोल करने, बिकम द मास्टर ऑफ द माइंड। आप अपने मास्टर बन के बैठ जाइए और देखिए, खेल को देखो, खेल होता रहेगा, खेल आपके पास ही आएगा। यू आर द मास्टर। मास्टर के पास तो गेंद आएगी ना, सिक्सर मारिए, फिर जब गेंद आए तो सिक्सर मारिए। जो ड्यूटी यज्ञ में आपको मिली है, जो मिली है, पानी पिलाने की मिली है, खाना खिलाने की मिली है, उसको 100% करिए। आप देखोगे आपने एक ड्यूटी 100% कर दी कि जैसे बाबा ऊपर देख रहा हूं मैं वो काम कर रहा हूं, तो आप देखोगे आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपने वो काम ठीक नहीं किया तो बाबा कहेगा ठीक है बैठे रहे, अभी ऐसे ही करते रहे, तो वही की वही ड्यूटी चलती रहेगी। पर प्रमोशन चाहते हो यज्ञ में, भगवान के घर में, तो जो ड्यूटी दी जाए उसको प्यार से, मोहब्बत से, 100% ऑल आउट, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, मैनेजमेंट में ऑल आउट, नॉट होल्ड आउट। उसमें मुझे क्या अच्छी करना है, जो भी ड्यूटी हमें दी जाती है, क्यों दी जाती है, कि इसमें आप क्या चेंज करो। अगर वही की वही गद्दी ऐसी की ऐसी रख दी, वैसी की वैसी कर दी, तो ठीक है, यू आर ए मैनेजर, पर इसमें क्या ब्यूटी मैं ला सकता हूं। तो अगर आप हर कार्य में ब्यूटी लाना चालू कर देते हैं तो आप लीडर बन जाते हैं, उस फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। अब देखो जितने भी ज्ञान में आए, उन्होंने अपनी मेहनत कर करके उसमें ब्यूटी डाल दी और वो लीडर बन गए। तो ये बाबा चांस सबको मिलता है, ये ऐसा नहीं है कि बाबा किसको चांस सरेंडर को देता है, नहीं सरेंडर, सबको वो चांस दे। अब ये हमारे ऊपर है, उसको हम कितना लेते हैं, कितना प्ले करते हैं। अगर आप 50% प्ले करोगे तो वो कहेगा ठीक है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, आपको उसको क्रॉस करना पड़ेगा। क्योंकि माया भी क्या होती है, उसी फॉर्म में आएगी जिस जो वीकनेस आपको है। माया क्या है अल्टीमेटली, अगर मेरे में जो वीकनेस है उसको मैं ठीक नहीं करूंगा तो वही पेपर बार बार आएगा, उससे गुस्सा आता है ना, वही व्यक्ति बार बार आएगा, वही मेरा बॉस बनेगा, उससे ही मेरे को रोज रिएक्शन होगा। अब मुझे इसको क्रॉस करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल इजी हो जाना पड़ेगा, कोई गुस्सा नहीं, उससे बहुत अच्छी तरह रहना पड़ेगा। देखो आपको बाबा खुद ही आगे प्रमोट कर, क्योंकि वो तो देगा, सिचुएशन देगा, उसने ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हें सिचुएशन नहीं दूं। हे भगवान मुझे कोई टेंशन नहीं देना, ध्यान में आ जाऊं, सब कुछ मिले, मैं आपको 24 घंटे याद करते रहूं, नहीं होगा। आइडियल कंडीशन किसी भी ब्राह्मण को नहीं मिलेगी, कि मेरे को आइडियल कंडीशन मिल जाए बस फिर तो बाबा को योग कर। मजा तब है जब पीसलेसनेस में पीसफुल बनकर चले, आइडियल कंडीशन में न रहकर हम बाबा को याद करें, उसका मजा अलग आता है। पीस में यहाँ, तभी तो मैंने कहा ना कि यहाँ आ गए आप वहां अच्छा योग नहीं लगता था, यहाँ क्या लगेगा, यहाँ तो शांति है बिल्कुल है, फिर आपको अंदर ही अंदर खाएगा। आपका योग वहां अच्छा लगता है तो यहाँ भी बहुत बढ़िया मजा आएगा। मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट इतने अच्छे रहते हैं, 3 दिन आते हैं, तीनों दिन इतना वो यूज करते हैं बाबा के, इसमें जाएंगे बिल्कुल 100% जो अंदर रहने वालों से भी नंबर ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े कैजुअल हो जाते हैं। ठीक है भगवान तो हमारे यही है ना, दादियां तो हमारे सामने ही है ना, तो हम लोग थोड़े ढीले हो जाते हैं। पर बाहर वाले देखा, इसीलिए आप लोग बहुत वॉरियर्स हो, बाबा ने आप सबको भेजा फॉरेन कंट्रीज में, इसलिए भेजा है कि आप लोग टफ सोल्जर्स हो। सोल्जर्स को कहां भेजा जाता है, जनरल्स को, लड़ाई के मैदान में, महाभारत के, और जो कमजोर होते हैं उनको हमें यहाँ पकड़ के रख लिया। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच।